इस विशेष गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम एक खास दस्तावेज देख रहे हैं, एमन वातावरण .pdf। इसके जरिए हम गायत्री तीर्थ शांति कुंज के मूल दर्शन को, उसके लक्ष्यों को और वहां के माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। ये दस्तावेज हमारे एक श्रोता ने साझा किया है, तो हमारे इरादा है कि हम गुरुसत्ता की दृष्टि, शांति कुंज का जो अनोखा वातावरण है और वहां जो जीवन शैली अपनाई जाती है, उससे जुड़ी खास बातें निकालें, समझें ये स्रोत शांति कुंज के क्यों और कैसे पर मतलब रोशनी डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि स्रोत के मुताबिक गुरुसत्ता आखिर हैं कौन? दस्तावेज उन्हें सिर्फ एक संत या कोई चमत्कारी व्यक्ति के तौर पर नहीं दिखाता है ना?
हाँ बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है कि वो खुद को ईश्वर का हिस्सा मानते हैं, जैसे राम के वानर या कृष्ण के ग्वाल बाल। और एक बात जो बहुत गहराई तक छूती है वो एक उद्धरण है शायद वांग्मय 68 से, जहां वो कहते हैं, हमारी कितनी रातें सिसकते बीती हैं, कितने बार हम बालकों की तरह बिलख बिलख कर रोए हैं। वो आगे कहते हैं, लोग हमें संत सिद्ध ज्ञानी मानते हैं, पर किसने हमारा अंतःकरण खोलकर पढ़ा समझा है? कोई उसे देख सका होता तो उसे मानवीय व्यथा वेदना की करुण कराह से हाहाकार करती एक उद्विग्न आत्मा इस हड्डियों के ढांचे में बैठी बिलखती दिखाई पड़ती।
ये बहुत मतलब मार्मिक है।
हाँ बहुत। और वो साफ कहते हैं कि उन्हें चमत्कारी पुरुष ना समझे, बल्कि ऐसा व्यक्ति माने जिसके पेट में से आग निकलती है, जिसकी आंखों से शोले निकलते हैं। ये दिखाता है कि उनकी प्रेरणा शायद मानवीय पीड़ा से जन्मी एक तीव्र आंतरिक अग्नि है। और ये बात इसे बहुत दिलचस्प बनाती है ना, जोर किसी अलौकिक सिद्धि या चमत्कार पर नहीं है, बल्कि उस गहरे आंतरिक संघर्ष पर, उस मानवीय पीड़ा पर है जिससे वो गुजरे। ऐसा लगता है मतलब वो चाहते हैं कि अनुयायी उन्हें इस मानवीय धरातल पर समझें, उनकी उस वेदना को महसूस करें जिसने उन्हें बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। ये उनके पूरे मिशन को, यानी व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन को, एक मानवीय आधार देता है। ये समझना जरूरी है कि इस दर्शन के अनुसार आध्यात्मिकता सिर्फ शांति और आनंद का रास्ता नहीं है, वो तीव्र पीड़ा और संघर्ष की भट्टी से तपकर भी निकल सकती है। अनुयायियों के लिए इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि वो भी अपने संघर्षों को आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में देखें।
बिल्कुल। तो इस गहरी मानवीय अनुभूति और तीव्र प्रेरणा के साथ गुरुसत्ता का मूल उद्देश्य क्या बताया गया है? स्रोत कई बातें सामने रखता है, एक तो ये कि लोग उनके जीवन से सीखें, उनके संघर्षों से, उनके सिद्धांतों से। दस्तावेज में लिखा भी है, हमारे जीवन से कुछ सीखें। लेकिन इससे आगे बढ़कर कुछ बहुत बड़े लक्ष्य भी हैं, जैसे मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। सुनने में ये बहुत ऊंचा आदर्श लगता है, स्रोत के अनुसार ये होगा कैसे?
स्रोत बताता है कि इसका रास्ता व्यक्ति निर्माण से शुरू होता है, फिर परिवार निर्माण और अंत में समाज निर्माण। ये एक तरह का, यूं समझिए कि बॉटम अप अप्रोच है। व्यक्ति सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, और इसी से जुड़े हैं वो लक्ष्य, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज। मतलब व्यक्तिगत स्वास्थ्य और मानसिक शुद्धि को सामाजिक सभ्यता की नींव माना गया है।
श्रोत में वसुधैव कुटुंबकम, अब पूरी पृथ्वी एक परिवार है, इस विचार को साकार करने की बात भी है, और साथ ही एक राष्ट्र, एक भाषा, एक धर्म, एक शासन का जिक्र भी है। ये शायद उस समय के संदर्भ में एकता पर जोर देने का एक तरीका रहा होगा, है ना, ताकि भेदभाव रहित समाज बने जहां लिंग, जाति, वर्ग के आधार पर कोई अंतर ना हो, सबको समान अवसर मिले।
हाँ, और इन उद्देश्यों को कुछ नारों में भी ढाला गया है जो शायद अनुयायियों के लिए मंत्र जैसे हैं, जैसे हम बदलेंगे युग बदलेगा। यह सीधे तौर पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी को सामाजिक बदलाव से जोड़ता है। फिर प्यार प्यार प्यार, यही हमारा मंत्र है, और आत्मीयता, ममता, स्नेह और श्रद्धा, यही हमारी उपासना है। ये भावनात्मक जुड़ाव और रिश्तों पर जोर देते हैं। और फिर ये कि आत्मीयता का विस्तार ही अध्यात्म है। ये आध्यात्मिकता को किसी पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखता, बल्कि मानवीय संबंधों को गहरा बनाने की प्रक्रिया मानता है।
एक और अहम बात जो स्रोत में कही गई है वो ये है कि गुरुसत्ता को उनके भौतिक शरीर में नहीं खोजना है, बल्कि उनके विचारों और साहित्य में, है ना, उनकी शिक्षाओं पर चलना ही सच्ची भक्ति है। यहां तक कहा गया है कि गायत्री मंत्र की दीक्षा लेना वो महज एक रस्म नहीं है, बल्कि उनके जीवन का अनुकरण करने और उनके बताए अनुशासन, उनके व्रतों के अनुसार जीने का संकल्प लेना है। तो ये शिष्यत्व की एक अलग ही परिभाषा लगती है।
बिल्कुल, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव का एक पूरा खाका है। व्यक्तिगत स्तर पर आत्मसुधार, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, और सामाजिक स्तर पर एकता और कल्याण, सभ्य समाज, वसुधैव कुटुंबकम। और ये दोनों जुड़े हुए हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। शिष्यत्व यहाँ किसी व्यक्ति की पूजा नहीं, बल्कि विचारों का अनुसरण है। जीवन में उन विचारों को उतारना है। दीक्षा एक तरह का वादा है खुद से और उन विचारों से कि मैं एक अनुशासित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीऊंगा या जीऊंगी। ये कर्मकांड से ज्यादा आचरण पर आधारित है।
अच्छा, तो इस पूरी परिवर्तन की प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए शांति कुंज के एक बहुत ही खास अनोखे वातावरण का जिक्र है। स्रोत बताता है कि ये जगह हरिद्वार में है, गंगा किनारे, हिमालय की गोद में। इसे सिर्फ एक सुंदर स्थान नहीं कहा गया, बल्कि सप्तऋषियों की तपोभूमि बताया गया है और ऋषि विश्वामित्र की तपस्थली भी। ये भी कहा गया है कि वहाँ सूक्ष्म रूप में हिमालय की ऋषि सत्ताएं हमेशा मौजूद रहती हैं। ये तो काफी मतलब रहस्यमयी सा लगता है।
हाँ, और स्रोत स्थान की ऊर्जा पर बहुत जोर देता है। वहाँ लगातार जलने वाला अखंड दीप है, 2400 घंटे जप चलता है, रोज यज्ञ होते हैं। कहा गया है कि अरबों बार गायत्री मंत्र का जप और यज्ञ की आहूतियाँ वहाँ हो चुकी हैं। स्रोत के अनुसार ये पूरा वातावरण यज्ञ ऊर्जा से भरा है, गायत्री मंत्र से सिद्ध है, और इसमें गुरु सत्ता का प्राण और स्नेह व्याप्त है। एक लाइन है जो कहती है कि वहाँ होने से शरीर का कण कण झंकृत हो रहा है, शरीर मन और अंतःकरण सभी झंकृत और अभिमंत्रित हो रहे हैं। तो ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक पावर हाउस है।
बिल्कुल, स्रोत इसे पृथ्वी पर एक अद्वितीय स्थान बताता है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि इस दर्शन के अनुसार ये वातावरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या ये सिर्फ एक बैकग्राउंड है या इसकी कोई सक्रिय भूमिका भी है?
ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस विचारधारा के अनुसार ये वातावरण सिर्फ एक निष्क्रिय पृष्ठभूमि नहीं है, इसे एक सावधानी पूर्वक तैयार किया गया आध्यात्मिक इकोसिस्टम माना जाता है। इसका उद्देश्य ठीक वही व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन लाना है जिसकी हमने पहले बात की थी। सोचिए, हिमालय और गंगा का होना, ये तो भारतीय परंपरा में वैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। यहाँ उस प्राकृतिक ऊर्जा को निरंतर जप, यज्ञ और गुरु सत्ता की प्राण ऊर्जा से और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने का प्रयास दिखता है। तो इस दर्शन के अनुसार वातावरण खुद परिवर्तन की प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार है। ये इस विचार को बल देता है कि हमारा परिवेश हमारे आंतरिक विकास को गहराई से प्रभावित कर सकता है।
तो इस ऊर्जावान वातावरण से प्रेरणा लेकर या वहां रहकर अनुयायियों के लिए एक खास जीवन शैली भी तय की गई है, जिसे ऋषि प्रणीत दिनचर्या कहा गया है। ये काफी विस्तृत है, लेकिन क्या हम इसके मुख्य हिस्सों को समझ सकते हैं? ये सिर्फ सुबह जल्दी उठना और पूजा करना ही है या कुछ ज्यादा है?
ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने से कहीं ज्यादा है। ये पूरे दिन को समेटने वाली एक समग्र जीवनचर्या है। इसे हम कुछ हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं।
जैसे कि
सुबह की शुरुआत होती है आत्मबोध जागरण से, मतलब खुद को जानना, ईश्वर या सविता देवता के प्रति आभार व्यक्त करना और दिन की सकारात्मक योजना बनाना। फिर आते हैं आध्यात्मिक अभ्यास। इसमें प्राणायाम शामिल है, जिसे सिर्फ सांस लेना नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचना, रोकना और नकारात्मकता को बाहर फेंकना माना जाता है। ध्यान का अभ्यास है, जिसमें मैं कौन हूं जैसे सवाल और गायत्री मंत्र के जरिए तीनों शरीरों, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और पांच कोशों को जगाने की बात कही गई है। ये पंच कोश योगिक दर्शन में अस्तित्व के पांच स्तर होते हैं। साथ ही नियमित जप और यज्ञ भी इसका हिस्सा है।
और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए?
उसके लिए भी व्यायाम, आसन, प्राणायाम तो है ही, साथ में प्रज्ञा योग है, मुद्राएं हैं और बंध है। भोजन में अंकुरित अन्न पर जोर है, जिसे जीवंत भोजन और प्रकृति की ओर वापसी कहा गया है।
और मानसिक भावनात्मक विकास के लिए?
उसके लिए सत्संग है, चाहे वो प्रवचन सुनना हो, ऑडियो वीडियो देखना हो या किताबें पढ़ना। स्वाध्याय यानी खुद अध्ययन करना, खासकर महापुरुषों के जीवन और विचारों का, और साथ ही आत्मनिरीक्षण करना, चिंतन मनन को भी महत्व दिया गया है।
इसमें सामाजिक पहलू भी जुड़ा है क्या?
हाँ बिल्कुल, सहभोज है, बिना भेदभाव के साथ बैठकर भोजन करना, जिससे अपनेपन का भाव बढ़े और श्रमदान है, यानी स्वेच्छा से सेवा करना, जिसे अहंकार को गलाने का एक तरीका माना गया है।
और दिन का अंत कैसे होता है?
शाम को आरती होती है। इसे ईश्वर के गुणों का गान और उन गुणों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प माना गया है। फिर है नाद योग, मतलब मौन होकर अंदरूनी ध्वनि या ओंकार नाद पर ध्यान केंद्रित करना, जिससे माना जाता है कि गहरी संवेदनाएं और उदारता जागृत होती हैं। और रात को सोने से पहले तत्वबोध की प्रार्थना, इसमें दिन भर के कामों का लेखा जोखा, गलतियों के लिए माफी, सबके लिए आभार और अगले दिन बेहतर करने का संकल्प शामिल है।
यह तो सचमुच पूरे दिन की, बल्कि पूरे जीवन की यह संरचना है। ये सिर्फ कुछ धार्मिक क्रियाएं नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका लगता है।
बिल्कुल सही। अगर हम इसका सार देखें तो ये शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियों का एक ऐसा मिश्रण है जो पूरे दिन चलता है। इसमें आत्मनिरीक्षण, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण, आत्मविकास पर लगातार जोर है। ये केवल कुछ घंटे पूजा करने या ध्यान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समय का सही इस्तेमाल करके एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का खाका है। ऐसा जीवन जो न केवल अपनी शांति के लिए हो, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी हो। लोक संग्रह, लोक मंगल।
इस पूरी जीवन शैली और दर्शन को सहारा देने के लिए स्रोत में कुछ मुख्य सिद्धांत और ढांचे भी बताए गए हैं। ये थोड़े लिस्ट जैसे लगते हैं, लेकिन शायद ये समझने में मदद करते हैं कि ये सब काम कैसे करता है।
हाँ, ये लिस्ट जैसे जरूर है, लेकिन ये इस दर्शन के व्यवहारिक पहलू को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हें हम औजार या नक्शे की तरह देख सकते हैं। जैसे सीखने की प्रक्रिया के तीन कदम बताए गए हैं, पहला सीखना यानी जानना, दूसरा मानना यानी उसे स्वीकार करना, और तीसरा अभ्यास संस्कार, मतलब इसे इतना अभ्यास करना कि वह आदत बन जाए, स्वभाव का हिस्सा बन जाए। ये सिर्फ जानकारी लेने से आगे बढ़कर उसे जीवन में उतारने पर जोर देता है।
और सीखने में मदद के लिए क्या चाहिए?
श्रोत कहता है कि जिज्ञासा, ध्यान यानी मनोयोग और कोशिश तो चाहिए ही, साथ में बाहरी मदद भी जरूरी है, जैसे प्रेरणा, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, स्नेह और सही माहौल, जैसा शांति कुंज में बनाने का प्रयास किया गया है।
फिर कुछ चार चार के समूह भी हैं, जैसे चार सूत्री साधना।
हाँ, चार सूत्री साधना है, स्वाध्याय खुद पढ़ना, संयम आत्मनियंत्रण और सेवा दूसरों की मदद। इन्हें मजबूत करने के लिए चार गुण चाहिए, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। फिर चार तरह के संयम बताए गए हैं, और ये दिलचस्प है कि ये सिर्फ इंद्रिय संयम नहीं है, इसमें अर्थ संयम है, पैसे का सही उपयोग, समय संयम, समय बर्बाद न करना और विचार संयम, नकारात्मक विचारों पर काबू। ये दिखाता है कि आत्म अनुशासन को कितने व्यापक रूप में देखा गया है। और फिर आत्मविकास के चार चरण हैं, आत्मसमीक्षा, खुद को जांचना, आत्मसुधार, कमियां दूर करना, आत्मनिर्माण, अच्छे गुण विकसित करना और आत्मविकास, क्षमताएं बढ़ाना।
और तीन आधारों का भी जिक्र है, उपासना, साधना, आराधना। इन्हें कई चीजों से जोड़ा गया है, जैसे ज्ञान, कर्म, भक्ति योग, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, भावना, विचार, क्रिया, श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा। ये सब काफी जटिल सा लगता है, क्या ये सब आपस में जुड़े हुए?
हाँ, यहीं पर ये ढांचे रोचक हो जाते हैं। ये अलग थलग सूचियां नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उपासना, साधना, आराधना को जीवन के हर पहलू से जोड़ने की कोशिश है, चाहे वो ज्ञान हो, कर्म हो या भक्ति, शरीर हो, मन हो या आत्मा, हमारी भावनाएं हो, विचार हो या कर्म। ये एक स्तरित संरचना है। इसका फायदा यह है कि व्यक्ति अपनी समझ और क्षमता के अनुसार कहीं से भी शुरुआत कर सकता है और धीरे धीरे इन सभी आयामों पर काम कर सकता है। जैसे कोई शायद सेवा से शुरुआत करे, जो आराधना है या कर्मयोग है, कोई स्वाध्याय से, जो उपासना या ज्ञान योग है, कोई ध्यान यानी साधना से। अंततः लक्ष्य इन सभी को संतुलित करना है। इसी तरह तीन तरह के त्याग की बात भी है, लोभ, मोह, अहंकार, या वासना, तृष्णा, अहिंता, या फिर पुत्र, धन और प्रसिद्धि की इच्छा। ये उन नकारात्मक प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं जिन्हें छोड़ने पर जोर दिया गया है।
अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये स्रोत शांति कुंज को सिर्फ एक तीर्थ स्थान के रूप में नहीं देखता, बल्कि व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक पूरी दृष्टि, एक प्रणाली और एक विशेष वातावरण के तौर पे पेश करता है।
ये दृष्टि गुरुसत्ता की शिक्षाओं पर आधारित है, उनकी अपनी गहरी अनुभूतियों पर और अनुयायियों के लिए तय की गई खास जीवन शैली और सिद्धांतों पर आधारित है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से ये एक उद्देश्यपूर्ण, अनुशासित और सेवाभाव वाला जीवन जीने का आह्वान है, जिसे सिद्धांतों का स्पष्ट मार्गदर्शन और एक ऊर्जावान माहौल का सहारा मिला हुआ है। ये रास्ता खुद को बदलने से शुरू होता है और दुनिया को बदलने तक जाता है।
बिल्कुल, और यहीं से एक विचार मन में आता है जो इस सामग्री से ही निकलता है, लेकिन हमें थोड़ा आगे सोचने को मजबूर करता है। श्रोत बार बार सिर्फ जानने या सुनने पर नहीं, बल्कि उसे मानने यानी स्वीकार करने और अभ्यास करके जीवन का हिस्सा बनाने पर, मतलब अभ्यास संस्कार पर जबरदस्त जोर देता है। हमने देखा कि कितनी विस्तृत और संरचित दिनचर्या है, कितने सारे सिद्धांत और अभ्यास बताए गए हैं। अब सोचिए, आज की इस तेज रफ्तार भागदौड़ भरी आधुनिक जिंदगी में किसी व्यक्ति के लिए इस पूरी निर्धारित जीवन शैली को अपने रोजमर्रा के जीवन में पूरी तरह से उतारना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है? शायद यही सबसे बड़ी चुनौती है। और दूसरी तरफ, अगर कोई इस चुनौती को पार कर लेता है तो इस प्रयास का सबसे बड़ा इनाम या सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? यह सवाल शायद उन लोगों के लिए विचारणीय है जो इस मार्ग पर चलने की सोचते हैं या चल रहे हैं।
इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए श्रोता का धन्यवाद।